नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश
और साथ में मैं हूं विनीता।
आज हम आपके समक्ष 16 से 31 जनवरी का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओ, 2014 के पहले तक देश में कुछ गिने चुने स्टार्टअप थे और ये शब्द लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता था, लेकिन आज 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप और 118 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत इस दिशा में नई गाथा लिख रहा है
और नई पीढ़ी के लिए आकर्षण और आत्मविश्वास का केंद्र बनी स्टार्टअप पहल की सफलताओं ने दुनिया में भारत के युवा सामर्थ्य को नई पहचान दी है।
इसी का परिणाम है कि आज नौजवान अपने पारिवारिक परंपराओं से हटकर कहता है, मैं तो स्टार्टअप करूंगा। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप संस्कृति का विस्तार हो रहा है। दुनिया में स्टार्टअप का हब बन रहे भारत की सफलता की कहानी ही हमारी इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। इस पर हमने पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में चर्चा की थी। आज हम पत्रिका के अन्य समाचारों की चर्चा करेंगे।
राकेश, आगे बढ़ने से पहले आइए ना सुनते हैं स्टार्टअप की क्रांति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार।
साथियों, कुछ दिन पहले ही स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप 9 साल में बने हैं उनमें से आधे से ज्यादा Tier 2 और Tier 3 शहरों से हैं। और जब ये सुनते हैं तो हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाता है, यानी हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छोटे शहरों के स्टार्टअप में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। जब यह सुनने को मिलता है कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्टू, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम जैसे शहर स्टार्टअप्स के सेंटर बन रहे हैं तो मन आनंद से भर जाता है। नागालैंड जैसे राज्य में पिछले साल स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। वेस्ट मैनेजमेंट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स ऐसे सेक्टर हैं जिनसे जुड़े स्टार्टअप सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। ये कन्वेंशनल सेक्टर्स नहीं है, लेकिन हमारे युवा साथी भी तो कन्वेंशनल से आगे की सोच रखते हैं, इसलिए उन्हें सफलता भी मिल रही है। साथियों, 10 साल पहले जब कोई स्टार्टअप के क्षेत्र में जाने की बात करता था तो उसे तरह तरह के ताने सुनने को मिलते थे। कोई ये पूछता था कि आखिर स्टार्टअप होता क्या है, तो कोई कहता था कि इसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब देखिए, एक दशक में कितना बड़ा बदलाव आ गया। आप भी भारत में बन रहे नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपके सपनों को भी नई उड़ान मिलेगी।
श्रोताओं, इस बार के अंक में व्यक्तित्व की कड़ी में बालकृष्ण दोषी, पीएम मोदी का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन, 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के एक दशक पूरा होने और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष सामग्री को इसमें शामिल किया गया है।
और साथ ही रोजगार मेला, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला, राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम सहित पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। राकेश, में इसके अलावा इनसाइड में मन की बात और बैक कवर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि इस अंक की विशेषता है।
विनीता, व्यक्तित्व की श्रेणी में इस अंक में शामिल है डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। इमारतें केवल किसी जगह को आधुनिक रूप नहीं देती हैं, ये महत्वाकांक्षा को उपलब्धि और आशावाद को अवसर से भी जोड़ती हैं। भारत के मशहूर वास्तुकार डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी ने इसे साबित भी किया। उन्होंने न केवल देश की कई प्रतिष्ठित इमारतों को डिजाइन किया बल्कि जीवन शैली और पर्यावरण को ध्यान में रख सबसे सस्ते घर के तौर पर अरण्य को बना अपने घर के सपने को नई उम्मीद दी।
शायद इसलिए उन्हें दुनिया में वास्तुकला का ध्रुव तारा कहा जाता है।
26 अगस्त 1927 को पुणे में डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी का जन्म हुआ। दोषी परिवार के पास एक फर्नीचर की वर्कशॉप थी। परिवार को लगता था कि बेटा भी इसी पेशे को अपनाएगा, लेकिन बालकृष्ण का मन वास्तुकला में रमा। उन्होंने 1947 में मुंबई के प्रतिष्ठित सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लिया। 1950 में लंदन चले गए। दोषी का प्रतिष्ठित कैरियर 6 दशकों से अधिक समय तक रहा। इसमें 100 से अधिक परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
1950 के दशक में उन्होंने चंडीगढ़ के लिए योजना बनाने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ली कॉर्बुज़िएर के साथ काम किया और 1960 के दशक में IIM अहमदाबाद की रूपरेखा पर लुई कान के सहयोगी के रूप में काम भी किया। विश्व भर के पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी की जीवन गाथा आप इस पत्रिका में पढ़ सकते हैं।
विविधता, भारत जैसे भौगोलिक रूप से विविधता भरे देश में जहां एक ही समय कोई हिस्सा अतिवृष्टि तो कोई सूखे से लड़ रहा होता है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था, नदियों को जोड़ने का। 22 वर्ष बाद बुंदेलखंड की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी के इसी सपने को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर धरातल पर उतार उन्हें श्रद्धांजलि दी।
केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के रूप में, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि की नई राह खुलने जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खुजराहो में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक की नींव रखी। ये परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के 22 साल पहले देखे उस सपने को पूरा करने की शुरुआत है, जिसके माध्यम से उन्होंने वर्षों से बूंद बूंद को तरस रहे बुंदेलखंड की प्यास को तृप्त करने का संकल्प लिया था।
इस संकल्प की शुरुआत हुई थी 2002 में, जब देश का बड़ा हिस्सा भयानक सूखे का सामना कर रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को आपस में जोड़ने के काम की व्यवहारिकता परखने के लिए एक कार्यदल का गठन किया। इसने इसी साल अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। नदी जोड़ो योजना में गंगा सहित 60 नदियों को जोड़ने की योजना थी। इस परियोजना की विस्तृत जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं।
विनीता, पिछले एक वर्ष में राज्य में रखी गई विकास की नींव ने राजस्थान के लोगों को विकास का उत्सव मनाने का मौका दिया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष में हिस्सा लेने के साथ ही 46,300 करोड़ रूपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
विकसित भारत की राह को आसान बनाने के लिए राजस्थान में सड़क, रेल, बिजली, जल संसाधन और संरक्षण सहित अन्य दूसरी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार राज्य को हर संभव मदद दे रही है।
राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इससे देश में राज्य की एक अलग पहचान बनेगी। 2014 से पहले के दशक से तुलना करें तो पिछले एक दशक में राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2 गुने से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में कहा,
आज केंद्र और राज्य की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं।
राजस्थान में सौर ऊर्जा की काफी संभावनाएं हैं और ये इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकता है। सरकार ने सौर ऊर्जा को बिजली बिल शून्य करने का साधन बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से राजस्थान को बहुत लाभ होगा।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार छत पर सौर पैनल लगाने के लिए 78,000 रूपए प्रदान करती है। इस योजना के लिए 1.4 करोड़ से अधिक परिवारों ने अभी तक पंजीकरण कराया है। राजस्थान को मिली सभी सौगातों की जानकारी भी पत्रिका में शामिल है।
सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने न सिर्फ अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, बल्कि डिजिटलाइजेशन के जरिए पारदर्शी और रोजगार परक बनाने के लिए कई प्रभावी कदम भी उठाए।
इसका परिणाम हुआ कि कुछ वर्ष में ही देश में सहकारिता का दायरा बढ़ा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति MPEX डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने जब वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया तब सहकार से समृद्धि का विजन दिया था।
सहकार से समृद्धि तभी संभव है जब हर पंचायत में सहकारिता की उपस्थिति और वहाँ ये किसी न किसी रूप में काम करे, क्योंकि देश के त्रिस्तरीय सहकारिता ढांचे को सबसे ज्यादा ताकत प्राथमिक सहकारी समिति ही दे सकती है।
यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2 लाख नए पैक्स बनाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने 5 साल में 2 लाख नए पैक्स के गठन का लक्ष्य रखा है। इससे किसानों की उपज को वैश्विक बाजार में पहुंचाना सरल हो जाएगा। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी भी पत्रिका में शामिल है।
भारत और कुवैत पारस्परिक सहयोग और सौहार्द भरे रिश्तों की मिसाल कहे जाते हैं। दोनों देशों के गहरे रिश्तों और आपसी विश्वास का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि जहां 1961 तक कुवैत में भारतीय रुपया कानूनी मुद्रा के रूप में प्रचलित था, तो वही भारत वो पहला देश है जिसने कुवैत को मान्यता दी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे ने इन रिश्तों को एक नई उड़ान दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जावेद अल सभा के निमंत्रण पर कुवैत पहुंचे, तो ये 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। मध्य पूर्व के किसी भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 14वां दौरा था।
भारत और कुवैत के बीच सहयोग को बढ़ते आपसी व्यापार से भी समझा जा सकता है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और कुवैत के बीच सालाना कारोबार करीब $10.47 अरब का हुआ। यही नहीं, भारतीय निर्यात के आंकड़े में इस दौरान 34% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। कुवैत ने भारत में करीब $10 अरब का निवेश भी किया है। कुवैत यात्रा के दौरान जब पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, तो वहां मिनी भारत की झलक दिखी। कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सभा ने पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के इस दौरे की संपूर्ण जानकारी भी पत्रिका में शामिल है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायक की भारत यात्रा से श्रीलंका भारत के बीच संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हुआ है। दोनों देशों ने पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है और आर्थिक साझेदारी में निवेश आधारित ग्रोथ एवं कनेक्टिविटी को प्रमुखता दी है। फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी को भागीदारी के अहम स्तंभ के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है।
भारत श्रीलंका के लोगों का संबंध दोनों देशों की सभ्यताओं से जुड़ा है। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब भारत में पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो श्रीलंका में भी उसकी खुशी मनाई गई। संबंधों में मजबूती के लिहाज से फेरी सर्विस और चेन्नई जाफना फ्लाइट कनेक्टिविटी की गई। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती मिली है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागपति नाम और कनके संथुराई फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के बाद अब रामेश्वरम और तलाई मनार के बीच फेरी सर्विस शुरू की जाएगी।
बौद्ध सर्किट और श्रीलंका के रामायण ट्रेल के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने पर भी काम किया जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान लिए गए सभी निर्णय पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं।
राकेश, कल एक बहुत ही विशेष दिन है, 26 जनवरी 2025 यानी हमारा 75वां गणतंत्र दिवस।
गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कर्तव्य पथ पर अपनी झांकियां प्रदर्शित करने के लिए जिन 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन व दीव, गुजरात, गोवा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है।
इसके अलावा केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों विभागों को भी गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए चुना गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में झांकी की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास तय की गई है।
श्रोताओं, गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in/default.aspx वेबसाइट पर उपलब्ध है,
जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है।
इसका एक्स हैंडल NISPIB India।
इसके अलावा आप हमें response@nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी राकेश को
और मुझे यानी विनीता को
दीजिए
इजाजत।
नमस्कार।